ओम शांति। आज रमेश भाई जी हम सभी के बीच में आए हैं, उनके अनुभव का क्लास सुने। उससे पहले हम सभी भाई बहने उनका एक हाथ की ताली से दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। रमेश भाई भी बाबा के बहुत पुराने अनन्य रतन हैं। 40 वर्ष से आप मधुबन यज्ञ में समर्पित हैं। अपनी जो मनमोहिनी दीदी जी थी उनके साथ 40 वर्ष से साथ में रहकर उनकी पालना भी ली और बहुत गहरे अनुभव भी प्राप्त किए हैं। बॉम्बे से आपको ज्ञान मिला है और इनकी विशेष सेवा, हम जो ये इतना लिटरेचर पढ़ते हैं, नीचे शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर, जहां भी बड़े बड़े लिटरेचर डिपार्टमेंट हैं, उन सभी का ध्यान संभाल आप ही रखते हैं। और हर वर्ष साउथ में विशेष अपने अनुभव का लाभ बठ्ठियों द्वारा देने के लिए आप जाते हैं। जो भी पुस्तकों की नई इन्वेंशन आदि होती है उसका भी छपवाने आदि का कार्य, सारा जिम्मेवारी आपकी है। और अक्टूबर से ही यहाँ पर विदेशी भाई बहनों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो उनकी भी विशेष देखभाल करने की सेवा, उनको मदद करने का एक लाभ आप उनको देते हैं। तो ऐसे अनुभवी रतन रमेश भाई जी का आज हम अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे। रमेश भाई जी,
ओम शांति। बाप दादा की चरित्र भूमि, वरदान भूमि, तपस्या भूमि मधुबन में आने वाले सभी भाई बहनों की बाप दादा पालना करते हैं। ये भाग्य की बात है कि जो मधुबन में आकर के बाप दादा की तपस्या भूमि में इसका लाभ लेते हैं, क्योंकि पहले तो खाली मधुबन था, वो भी छोटा था, अभी तो बहुत बढ़ गया है। इसलिए भाई बहनों का सेंटरों से यहाँ आना बहुत कम होता है। इसलिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सब भाई बहनों को यहाँ तपस्या करने का चांस मिला, कुछ एक अलग ही अनुभव होता है। तो इसके लिए आप भाग्यशाली हैं मधुबन के अंदर। अभी आप सब भाई बहने क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली हम सुनते हैं, भाई बहनों के सारे क्लासेस सुनते हैं, अभी और क्या सुनना चाहते हैं? बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है अनुभव का, लेकिन थोड़ा सा सुनाएंगे। तो अभी आज जो आप पांडव भवन देख रहे हैं, जब मैं यहाँ आया था तो इतना बड़ा पांडव भवन नहीं था, क्योंकि मेरे आने के बाद में बहुत सारे मकान बने हैं और इतना बड़ा मकान पांडव भवन ही हुआ है। योग भवन, विज्ञान भवन, विशाल भवन, लाइट हाउस, ये सब बाद में बने, मेरे आने के बाद में। ये नया भंडारा जो है ये भी बाद में बना है, हम लोगों ने इसमें काम करके बनाया है। ओम शांति भवन, ये सारे हम लोग काम करते थे रात में यहाँ। बहुत छोटा था पांडव भवन और बेगरी पाठ से ये यज्ञ आ रहा था। दादियां सुनाती थी ना बेगरी पाठ, वो बेगरी पाठ बाबा अव्यक्त हुए उसके कुछ समय तक, बहुत समय तक चलता रहा। तो इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखा जाता था, कम से कम खर्च करना हर चीज का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, लकड़ी जलाने का, राख भी बर्तन मारने का यूज करने का, कम से कम इतना इकोनॉमी था। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में हम लोग थे और हमारे साथ में कई भाई बहने भी थे, लेकिन बहुत सारे भाई बहने चले गए सरेंडर, ऐसा समय था उस समय। तो मुझे आत्मा को दादी और दीदी का संग बहुत मिला और मेरे को पास में बिठा करके बच्चे की तरह समझाती थी कि ये बाबा का यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है, मालूम है ना? हाँ दीदी मालूम है, तुमको मालूम है यहाँ माया बैठी हुई है। मैंने कहा माया छोड़ करके बंबई से मैं आया और यहां भी माया बैठी तो फिर कहां जाऊं? तो नहीं, ये सावधानी रखना है, भगवान का घर है, यहां भी माया है। ऐसा नहीं कि भगवान के घर में फ्रीली सब खाओ पियो रहो बोलो हंसो बेलो कुछ भी करो, नहीं, माया बैठी हुई है, सावधान रहना है। तो दादी दीदी का जो मेरे को संग मिला है और उससे जो संस्कारों की जो पालना मिली है, आज उस बात को 40 साल हो गया। तो दीदी ने मेरे को, मैं यहां सेवा करने के लिए पहले पहले आया तो दीदी ने कहा, तो दादी ने वो मेरी सेवा से, मेरे संस्कार से, स्वभाव से, मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलने से, और इतने डिपार्टमेंट नहीं थे पहले, हर एक डिपार्टमेंट में जाके काम करते थे, बहुत खुश हो गई। तो मेरे को बिठाया दीदी ने अपने पास में और कहने लगी कि तुम यहां रहोगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं रहोगे? मैंने कहा मैं तो सेवा करने के लिए आया, अब सेवा करके फिर वापस जाऊंगा बम्बई। बोले कि नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंड करता है क्या बम्बई में? मैंने कहा नहीं, मैं कुमार हूं, स्वतंत्र हूं और अकेला हूं, भाई जो फैमिली के हैं वो लोग अलग रहते हैं। तो बोले कि अगर तुम्हारे पर कोई डिपेंड करता है तो दीदी उनको खर्चा देगी, लेकिन तुमको यहां रहना है। तो ऐसा करो, तुमको रहना ही है, मेरे को जबरदस्ती रखा हुआ है यहां पर, तो अभी ऐसा करो, दीदी आपको 8 दिन के लिए छुट्टी देती है, 8 दिन जाओ, सबसे मिल करके वापस आ जाओ। गया तुरंत, पहले टेलीग्राम चलता था, मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, टेलीग्राम चलता था, तुरंत वहां टेलीग्राम पहुंच गया कि रमेश को जल्दी भेजो। तो बहन ने बोला कि भाई दीदी बुला रहे जल्दी जाओ, आ गया वापस। तो उस समय इकोनॉमी के साथ साथ में पालना, शिक्षाएं, ये सब साथ साथ में चलती थी। अभी मैं जो बोलूंगा उसके अंदर क्या पालना है और क्या शिक्षा है वो आप उसका कंपेयर करते रहना। तो इतना प्यार आज दादियों के दर्शन करने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल होती है ना, और हम हमेशा साथ में रहते थे। तो दीदी ने मेरे को कहा कि यहां यज्ञ के अंदर जो भी आप देखो, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो ना, वफादार हो, ईमानदार हो, फरमानदार हो, तो आप जो यज्ञ में देखो कि कोई भाई कोई बहन कोई बात कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, कुछ जा रहा है, यज्ञ की मर्यादा के खिलाफ है, तो और दूसरे लोगों को नहीं बताना, दीदी के पास आ जाना और दीदी को सिर्फ बताना। क्यों? समझा रही है, क्यों? कि जैसे कोई कचरा है हम ऐसे फेंक देंगे तो चारों तरफ फैलेगा, और उसकी स्थान पर हम डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। तो इसी प्रकार से यज्ञ के अंदर कोई ऐसी बात देखो सुनो तो इधर उधर सबको सुनाना नहीं है कि हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये किया, नहीं, किसी को नहीं बताना, दीदी को आके बताना। ये नहीं समझना कि दीदी अभी सोई हुई होगी, दीदी स्नान करती होगी, दीदी कपड़ा पहनती होगी, तुमको मेरी छुट्टी है कि चाहे जब तुम्हारे दिल है मेरे पास में आ जाना। और मैं गया हूं दीदी के पास में और दादी के पास में पेटीकोट ब्लाउज में, बोले कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो क्या बात है, इतना स्नेह इतना प्यार, तो बहुत इज्जत होती थी हमारे ऊपर उनकी दादी की दीदी की, कि इनको जो कहेंगे वो करेंगे। तो एक पाठ पक्का कराया कि जो भी दादी दीदी आपको बोले तो हाँ जी बोलने का है, हाँ जी, ना नहीं है, डिक्शनरी में ना नहीं रखने का है। अगर आपको दादी बोले दीदी बोले कि जाओ कुएं में कूद जाओ तो बोलने का हाँ जी, ना नहीं बोलने का। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि बाबा हमको बोलता है कि आप आर्मी हो, मिलिट्री हो, आप ईश्वर की आर्मी हो, तो जो ऑर्डर मिले वो करना है। तो अपना नक्की लेके यहाँ सुबह चक्कर लगाते हैं नक्की लेके, तो यहाँ माउंट में एयरफोर्स है, मिलिट्री है, सीआरपी है, यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ये सब बेस यहाँ पर है। तो सुबह सुबह वो दौड़ते हैं, तो दिसंबर और जनवरी के मास में बहुत ठंडी होती है, तो आपने देखा होगा वाटरफॉल के तरफ लेक के अंदर एक खजूर का पेड़ ऐसा पानी में झुका हुआ है, और हम भी चक्कर लगाते थे। तो मिलिट्री के बॉस ने उसको बोला, सिपाही को बोला कि झाड़ पर चढ़ो, वो झाड़ पर यहां से चढ़ा, बोले कि अभी कूद जाओ पानी में, बोले कि नहीं सर ठंडी लग रही है, ठंडी में कैसे करूंगा मैं, नहीं सर नहीं ठंडी लग रही है। दूसरे को बोला कि जाओ पीछे से, पीछे से गया और उसको धक्का दे दिया, पानी में गिर गया। इतनी ठंडी, ये कितने वर्षों पहले की बात सुना, अभी तो ठंडी कम हो गई। तो दादी दीदी ने हम लोगों को ये शिक्षा कि ना बोलना ही नहीं है। और मेरे मैंने देखा है कि जिन्होंने इस श्रीमत की अवगेलना की है, ना बोला है, वो लोग अभी यहां है मधुबन में, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं है, अभी भी है, कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे ऑर्डर कौन कर रहा है। बाबा की श्रीमत से ऑर्डर हो रहा है, बाबा जानता है कि मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा, मेरे हानि होगी, वो तो बाबा जानता है, वो ऑर्डर कर रहा है। इस बात को न सोचने के कारण जिन्होंने भी दादियों की श्रीमत की अवगेलना की है, वो लोग यहां है, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे हाँ जी का पाठ बनाओ बजाओ, हाँ जी करते जाओ, आपका भविष्य बनता जाएगा। तो ऐसे करते 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 मधुबन के अंदर उस समय कोई मोटर गाड़ी नहीं थी, एक लैंडलाइन फोन इसु दादी के ऑफिस में था। इसु दादी का ऑफिस देखा है ना, यहां वहां दादी और दीदी बैठती थी, पत्र वगैरह लिखती थी, एक लैंडलाइन फोन था। उसको भी बुक करने के लिए दिल्ली बंबई में फोन करना होता था, बुक करना पड़ता था, फिर उसमें लाइन मिलती थी, तब जाकर के बात होती थी। उस समय की बात है, तो आज से 35-40 साल हो गया उस बात को, जब कुछ नहीं था मधुबन में, तब हम अव्यक्त बाप दादा से गुलजार दादी आती थी दिल्ली से, इतना रहने का सुविधा भी नहीं था जो आज देख रहे हो। बाबा के कमरे में बैठते थे और दादी और दीदी बाबा का कमरा दरवाजा बंद कर देती थी, वो दोनों मिल लेती थी बाबा से, फिर मिल करके चली जाती थी, फिर हम जाते थे और गद्दी के पास बैठ जाते थे और बाबा से पर्सनल बातें करते थे। तो बाबा कहता था, ओ बाबा को टोली हाथ से मुख में खिलाते थे, बाबा हमको खिलाता था, बाबा हमको कहता था कि देखो ये बाप और बच्चे का जो मिलन है वो आगे चल करके बहुत दूर का मिलन हो जाएगा। अभी बात तुमको समझ में नहीं आती थी कि आगे चल करके बहुत दूर का मिलन हो जाएगा, और आज तुम सेवा जो कर रहे हो तो थक जाते होंगे, क्योंकि लकड़ी उठाना और राख उठाना, कोयला उठाना, सगड़ी जलाना और थेपला बनाना, भंडारे में काम करना, ये सारा स्थूल काम बहुत होता था, ये करते थे। बहुत प्यार से बाबा पास में बिठा के बोलता, थक जाते होंगे आप, ये समझते होंगे कहा बम्बई से आकर के यहाँ फंस गए, ऐसी ऐसी बातें करता था बाबा। मैंने कहा नहीं बाबा, हमको यज्ञ से प्यार है, बाबा से प्यार है, ऐसा हमारे दिल में नहीं होता है। बोले कि देखो अभी जो यज्ञ सेवा कर रहे हो ये सेवा नहीं, अनुभव प्राप्त कर रहे हो, आगे चल करके बहुत सेवाधारी आएंगे और बाबा से दूर से मिलन होगा और लक्ष्मी छुमछुम करेगी। ये पास में बिठा के बाबा बोल रहे। उस समय खाने पीने की भी इतनी तंगी थी, पहनने की तंगी, रहने की तंगी, हर चीज की। ये बात हमको समझ में कैसे आएगी बताओ, कि बहुत साधन आएंगे लेकिन, समझाया बाबा ने पास में बिठा के, साधन आएंगे लेकिन अपनी जो साधना चल रही है उसको नहीं छोड़ना। उस समय खूब साधना करते थे हम लोग, क्योंकि दूसरा कुछ काम ही नहीं था, स्थूल काम किया, खाना खाया और बस तपस्या करते थे, और कोई क्लासेस वगैरह ऐसा होता ही नहीं था। तो बाबा कहता था कि अपनी तपस्या को, साधना को नहीं छोड़ना, बहुत साधन आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक लैंडलाइन फोन था, आज हम सबके पास में जितने भी मधुबन निवासी भाई बहन है, किसी के पास में दो फोन, किसी के पास में तीन फोन, किसी के पास में चार फोन, किसी के पास में एक गाड़ी, किसी के पास में चार गाड़ी, किसी के पास में दस गाड़ी, एक भी गाड़ी नहीं थी। और ये बात हमको पहले से बाबा ने बता दी थी। अभी कोई तो इसके अंदर होते हुए भी अपने त्याग, तपस्या और सेवा में जैसे थे पहले, ऐसे लगे हुए हैं, और कोई नहीं है, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था। तो बाबा ने ये बात बताई थी लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती थी, आज इतने वर्षों के बाद में अब हम समझ रहे हैं कि बाबा ने हमसे क्या बात की थी। तो आज हम समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति और ऐसी हालत थी यज्ञ के अंदर। अभी तो ट्रक के ट्रक सब्जियां आती है और बहुत सारा बाबा के बच्चे यज्ञ में सब कुछ बेचते हैं, तो उस समय सब्जी मार्केट से सब्जी लेते थे, गाजर है, लौकी है, दूधी, ये सब लेते थे। अगर किसी ने, वहां रखा रहता था सब्जी मार्केट में, किसी ने गाजर उठा के खा लिया तो पता नहीं कौन देखता था उसको, वो जाकर के दीदी को बोल देता, दीदी ये फलाने ने गाजर उठा के खाया, बोले उसको बुलाओ मेरे पास। ऐसी स्थिति थी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ साथ में कायदा, नियम, मर्यादा, उसको बुलाओ मेरे पास में। अब उसको पता नहीं गाजर खाने वालों की मेरे को कोई देख रहा है, लेकिन कौन देख गया पता नहीं उसको। और दीदी को बता दिया, दीदी कंट्रोलर थी, क्योंकि मम्मा के बाद में बाबा ने दीदी को मम्मा की जगह पर रखा था, इसलिए सारे यज्ञ की कंट्रोलर दीदी थी। कोई भी बात है दीदी के पास में जाओ, फिर दीदी दादी उस दोनों बात को बैठ के सुलझाएंगे। तो उसको बुलाया, बोला कि तुमने गाजर उठाया? बोले कि जी दीदी। क्यों उठाया? बोले कि मैंने गाजर है ना उठा लिया, क्या हुआ उसमें खा लिया। बोले कि बाबा ने डिपार्टमेंट इंचार्ज बनाया हुआ है, उस इंचार्ज को तुमने पूछ के उठाया? बोले दादी दीदी वहां तो कोई था ही नहीं, तो मैंने उठा के खा लिया, बाबा का है, अपना है। बोले कि नहीं, बाबा ने ये नियम बनाए हैं कि इंचार्ज को पूछे बिना कोई चीज लेनी नहीं, नहीं है। आज भी, आज इतना यज्ञ संपन्न है, फिर भी दादी दीदी को अगर जरूरत है पहले से लेके अभी तक भी, जाओ स्टोर में देखो रमेश है, उसको बोलना कि दीदी ने ये मंगाया, दादी ने ये मंगाया। आज भी, अभी भी, शुरू से लेके अभी तक, अगर वो नहीं है तो फिर वो जब आएगा ना तब जाना। माना उनका नियम ये है कि जो इंचार्ज है उसको मालूम होना चाहिए कि कौन कहां क्या चीज ले जा रहा है, नहीं तो वो तो मालिक है ना, वो तो डिपार्टमेंट से क्या कहीं से भी कुछ भी अपनी ब्राह्मणी को भेजेंगे उठा के ले आएंगे। लेकिन नहीं, कायदा है ना, ऊपर से बना हुआ है ना, बाबा का बनाया हुआ है ना, ऐसे नहीं करना है, इंचार्ज से पूछो और फिर ले आओ। तो इस प्रकार के नियम, कानून, कायदे जो बने हुए थे उसके अंदर हम लोग सब डले हुए हैं। आज यज्ञ संपन्न है लेकिन हमारी वही की वही हालत है जो हमको सिखाया गया है, वही वही इकोनॉमी से चलना है। मैंने जैसे आपको बताया लिटरेचर डिपार्टमेंट में 6 गाड़ियां हैं, एक भी मधुबन में नहीं थी गाड़ी, और बाबा ने वरदान दिया कि बहुत कुछ साधन आएंगे, लेकिन मेरी कोई कुछ चीज नहीं है। जो ट्रस्टी की बात है, और ट्रस्टी के माफक यूज करना है साधन को, मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। और जो मेरे पास में 25 भाई सरेंडर सेवादारी है, उनको कभी ये फील नहीं होता कि रमेश भाई कोई हमारा बॉस है, कभी भी नहीं। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई बात नहीं, उनको ऐसे रखता हूं जैसे दादियों ने हमको रखा। तो उनकी दादियों की पालना जो हमें मिली, बोली दादी, आप सबने देखा होगा बोली दादी को, ऐसे हमारा हाथ पकड़ कर पास में बैठा लेती थी, बोले इधर बैठो, सुनो, जाओ बाबा को भोग लगाओ, मेरे को बोलती है, भोग लगाओ बाबा को। तो मैंने कहा दादी मेरे को भोग लगाना नहीं आता, भोग तो बहनों को लगाना आता है ना, मुझे क्या थोड़ी भोग लगाना आता है। बोले कि मैं बताती हूं, तो यहां टेलीफोन एक्सचेंज है ना, अभी ये भंडारा था, जो टोली वाला है वो बाजू में कोठी थी, एक सामान रखते थे वहां पर, इधर खाना बनता था, मेरे पास में बैठ गए, पाट थैला है ना अपना कंतान का, वो बिछा दिया, बोले इसमें बैठ जाओ, बैठा, एक पाट के ऊपर थाली रख दी, रूमाल ढक दिया और मेरे पास में बैठ गए। बोले कि मैं बोलती हूं ना ऐसे बाबा से बात करो, क्या बोलो, बाबा बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया है, मीठे बाबा आप प्यार से ये ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो, ऐसा बोलो। वो मेरे को सिखा रही है कि ऐसा बोलो बाबा को, ये भोग लगा बाबा, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, आप आओ प्यार से स्वीकार करो। तो ऐसा पास में बैठ करके सिखाती थी, नहीं तो मैंने कहा मेरे को तो भोग लगाना नहीं आता। तो मैंने एक बार, कोई बहन थी, मधुबन की बात बता रहा हूं, तो वो भोग लगा करके बाबा के कमरे में भोग लगता ना हमेशा आ रही थी, तो मैंने उसको पूछ लिया कि बहन जी आज भोग में क्या है, बोले मुझे क्या पता, अरे भोग आपने बाबा को लगाया, बोले मेरे को नहीं पता, हो तो जो दिया मैंने वहां बाबा के सामने रख दिया। मेरा मतलब बताने का ये है कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा से हमारा कितना प्यार है वो दिखाई पड़ना चाहिए, वो अनुभव में आना चाहिए, न सिर्फ मेरे लेकिन मेरा बाबा से प्यार है वो आपको भी दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये तो अपना परिवार है, और उस परिवार के अंदर वो प्यार जो दादी दीदी ने हम लोगों को दिया है अपना समझ करके, 40 साल हो गए मेरे को यहां पर, मैं कभी अपने लौकिक घर में आज तक नहीं गया। मैं बंबई जाता हूं, सेंटर पर रहता हूं, और उनको बहन बताती है कि रमेश भाई मधुबन से आया है, तो वो लोग मेरे को मिलके जाते हैं, लेकिन मैं उनके घर पे नहीं जाता। उनको चाहिए तो मधुबन में भी आकर रहते हैं, मिलके जाते हैं, लेकिन मैं उनके लौकिक घर में नहीं जाता। क्यों? कि बाबा ने कहा कि तोड़ निभाओ, अरे लौकिक को छोड़ करके वो सरेंडर होकर फिर वहां जा रहे हैं वापस, किस लिए? तो सरेंडर किस लिए हुए फिर? सेवादारी बनकर रहना था ना, वहां आधा दिन वहां रहना था, आधा टाइम यहां रहना था। तो समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण, समर्पया में। तो उनके साथ में कोई संबंध नहीं है, इतना बड़ा मेरा ये परिवार और दो चार लोगों के मिलने के लिए वहां जाऊं मैं बंबई, इतना परिवार को छोड़ करके। तो दादी का और दीदी का इतना प्यार, भोली दादी से इतना प्यार, सुबह सुबह नहा धोकर के तैयार होकर के आते थे, सुबह 6 बजे हमारा क्लास शुरू होता था, बड़ी दादी मुरली सुनाती थी, और हिस्ट्री हॉल में एक भी चेयर नहीं था, एक मुड़ा होता ना बेत का, वो यहां पर रखा रहता था, वो दीदी के लिए, बड़ी दीदी के लिए एक ही, और सब हम फ्लोर में बैठते थे नीचे, पहली लाइन के अंदर निर्वेर भाई, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, ईसु दादी, ये सब पहली लाइन में बैठते थे, और प्रकाशमणि दादी मुरली सुनाती थी, और एक मुड़ा था चेयर बांस का जो आता है ना, वो उसके ऊपर दीदी बैठती थी ऐसे सामने, और मुरली चलती थी, सब नीचे बैठते थे, चेयर था ही नहीं, बैठे किस पे है ही नहीं कुछ। तो ऐसे समय के अंदर भोली दादी मुझे बुलाती थी सुबह और कहती थी आओ इधर बैठो, नहा धो के आए हो? कहा तैयार है। तो रात को बची हुई दाल और बची हुई सब्जी ढक के रखती थी पतीले के अंदर, बोले कि आटा निकालो थाली में और इसको बांधो, थेपला बनाना है। मैं खुद उन सब चीजों का गूंद करके और थेपला बनाते थे नाश्ते के लिए, इतनी इकोनॉमी थी। आज ट्रक का ट्रक क्या हो रहा है, हम देखते हैं ना तो हमको अंदर कुछ होता है। तो वो थेपला बनाने के लिए वो सब्जी और दाल का थेपला बनाते थे और सब बड़े प्यार से खाते थे। तो भोली दादी का इतना हम भाइयों के ऊपर प्यार था ना, उसका फटाफट काम करते थे जो भी बोलती थी वो। तो ठंडी बहुत पड़ती थी मधुबन के अंदर, तो भोली दादी से तो मेरा प्यार था ही। तो सुबह 6 बजे क्लास में जाने, तो वहां वो वरंडा जो टेलीफोन का है ना, वो वरंडा था पूरा सीधा छोटे हाल के पास में निकल जाता था, वहां से निकलते थे। मैंने कहा भोली दादी आज बहुत ठंडी है, तो आज है ना देसी घी का हलवा बनना चाहिए टोली। अब मैंने हंसी हंसी में उसको कहा, हंसते बेलते रहते थे ना दादी के साथ में, हंसी हंसी में मैंने उसको कहा कि आज बहुत ठंडी है दादी, देसी घी की टोली है ना क्लास की मिलनी चाहिए, आज बननी चाहिए। वो बोले कि ऐसे ही बोल रहा है, और मैंने भी कहा कि मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, और बोल करके मैं तो क्लास में चला गया। उसके बाद में सबके बाद में दीदी आती, बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी, और भंडारे में चक्कर लगा के फिर क्लास में जाती सुबह क्लास मुरली का। भोली दादी ने दीदी को बता दिया, दीदी वो रमेश गोप है ना वो बोल रहा था कि क्लास की टोली देसी घी का गरम गरम हलवा बनाओ। दीदी को बोल दिया। तो दीदी ने कहा बनाओ, अब ये बात मुझे पता नहीं है, दीदी ने कहा बनाओ, तो भोली दादी ने बना दिया। अभी क्लास जब पूरा हुआ तो दीदी वहां बैठी हुई है, और मैं सबके पीछे बोला बोले इधर आओ इधर आओ। दीदी के पास बैठ गया तो मेरे कान में बोलती है कि तुम्हारा दिल था ना कि सब भाई बहनों को देसी घी का हलवा टोली क्लास में मिले, तो दीदी ने कहा बोली को बनाओ, उसकी दिल है ना, तो जाओ तुम अपने हाथ से सबको खिलाओ। तो पालना और प्यार, बहुत प्यार। अब मैंने कहा मेरा कौन कहना मानेगा। इसी प्रकार से बड़ी दादी मुरली चलाती है, और कभी आता है कि बच्चों को आज मक्खन माने खिलाना है, तो बोलती थी माइक में वहां से, बोली सुन रही हो, आज बाबा बच्चों को मक्खन मान नहीं खिलाना चाहता है। उधर काम शुरू हो गया भंडारे में, सब भाइयों को बुलाया, चलो सिगड़ी जलाओ, ये करो, आटा लगाओ, फलाना करो, टेबल लगाओ, दादी आएगी क्लास के बाद। तो हम सब लाइन में जाते थे, और इतनी छोटी छोटी से मानी बनती थी रोटी, उसको मानी बोलते हैं, इतनी छोटी छोटी बनती थी, और वहां दादी खुद अपने हाथ से एक भाई बना के देता था, उसमें मक्खन डालता था, ऐसे करके सीधा डायरेक्ट मुंह में डालती थी गरम गरम। इतनी पालना अभी कौन करेगा। तो दादी दीदी का जो प्यार है और जो पालना है, बात मत पूछो। इसलिए आज भी हम जानकी दादी के पास में जाते हैं, गुलजार दादी के पास में जाते हैं, दादियों के पास में जाते हैं, रोज जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, और यज्ञ की बातें उनको सुनाते हैं। लेकिन दादियों की आज की अवस्था जो है वो ऐसी अवस्था है जैसे छोटे बच्चे के माता, गुलजार दादी की शांत मूरत ऐसे दिखती रहेगी, कभी कभी कुछ बोले कि नहीं। हम लोग जब नीचे होते हैं रोज दादी के साथ योग करते हैं, गुलजार दादी के साथ। एक बार गए तो दादी ने पूछा कि आप लोग आते नहीं, कहाँ जाते हो, शाम को कहाँ जाते हो? तो हमने कहा दादी हम हमारे पास में बाबा का कमरा है ना, वहीं बैठ कर हम योग करते हैं। बोले कि नहीं मेरे पास में आओ, मैं योग में बैठती हूँ, अकेली रहती है, तो अकेली उसके हाल में योग में बैठती है, लेकिन यहाँ आओ हम सब मिलके योग करेंगे। तो जब से उसने ऐसा बोला तब से हम रोज शाम को 7 बजे जाते हैं दादी के कमरे में और दादी के साथ बैठ करके योग करते हैं। योग करने के बाद 7:30 बजे के बाद में थोड़ा 2-4 शब्द सुनाती है, बोले कि देखो बाबा ने ये दिनचर्या बनाई है, शाम की और सुबह का योग कभी मिस नहीं करना चाहिए। अभी भी करती है, भगवान का रथ है, अवस्था बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन वो जो नियम बनाया है बाबा ने वो छोड़ना नहीं है, अभी भी करती है। और करती ही नहीं, हमें साथ में बिठा के कराती है। तो वो सुनाती है कि हम ये तो करते हैं, योग तो करते हैं, लेकिन नहीं, चलते फिरते काम करते ये अवस्था हमारी बननी चाहिए, अभी हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। योग युक्त, जैसे हम ज्ञान युक्त हैं, ज्ञान भरा पड़ा है हमारे अंदर, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सब भरा हुआ ज्ञान सभी भाई बहनों के अंदर, लेकिन योग युक्त जीवन, हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारी दृष्टि, हमारी कृति सब योग युक्त हो, ऐसा सबको महसूस हो, ऐसी अवस्था बनानी है। 4 शब्द बोलेगी, ज्यादा नहीं बोलेगी अभी भी। जी दादी, तो जानकी दादी के पास में हम जाते हैं और गुलजार दादी बोलते, तो जानकी दादी को गुलजार दादी बोल, जानकी दादी बोलती गुलजार दादी को कि ये जो लोग है ना, ये भाई है ना, ये दादी दीदी की पालना वाले हैं। दादी समझी, ये दादी दीदी की पालना वाले हैं, ये ऑनिस्ट हैं, वफादार है, फरमानदार है। गुलजार दादी को जानकी दादी सुनाती। तो जो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने इतनी पालना दी है, बात मत पूछो। बाबा के कमरे में मेडिटेशन हॉल में, छोटे हॉल में और ओम शांति भवन में, और उसके बाद में तो बच्चे बढ़ते गए बाबा को, इसलिए बाबा ने जो कहा था कि बाप और बच्चे की मुलाकात बहुत दूर से होगी, फिर दूर से मिलना शुरू हुआ। तो एक बार बाबा को हम मिल रहे थे यहाँ बाबा के कमरे में, होंगे मेरे ख्याल से 25 भाई होंगे हम, दादियां मिलके बाबा को चली जाती और हम लोग फिर मिलते रहते बाबा से। तो बाबा ने पूछा कैसे हम मिलते थे, वो आप सोच लो, अभी आज मिलन जो होता है मुरली चलती है, और हम कैसे मिलते थे, तब बाबा हमसे कैसे बात करता था। अच्छा सब ठीक हो? हाँ बाबा ठीक है। बहुत स्थूल काम करते हो, कभी आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं हो, मन मुटाव तो नहीं है, एक दूसरे से कोई ये तो नहीं है, लगाव झुकाव तो नहीं है, दृष्टि वृष्टि तो खराब नहीं है, ये सब ऐसी ऐसी बातें बाबा पूछता था। अगर ये बात है जो बाबा ने बताई वो किसी के अंदर नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। मैंने खड़ा किया, ऐसे 3 भाइयों ने खड़ा किया, 25-30 लोगों में से 3 भाइयों ने खड़ा किया। अब बाबा इस बात को कैसे वेरीफाई करता है वो आप डिसाइड करना उसमें। अभी यहां इतने ही लोग, बाबा का कमरा कितना बड़ा है, वहां बैठे हैं, बाबा सबको देख रहा है। मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे भी देखा, जिसने दूसरे ने हाथ खड़ा किया उसको भी देखा, पूछता है बाबा किसने हाथ खड़ा किया, तो वो लोग बोलते हैं कि इसने, रमेश भाई ने हाथ खड़ा किया। अच्छा ये तुम्हारे साथ में रहता है तो जो बाबा ने प्रश्न पूछा उसके अनुकूल ये है? अगर उसके अनुकूल है तो अब हाथ उठाओ, वेरीफाई। कहते हैं ना कि मटका को बजा बजा के वो देख करके लेते हैं, कि बाबा देखता है, बाबा जानता है मैं कैसे हूं, वो सब बाबा जानता है? नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। वो सामने आमने सामने वेरीफाई कर रहा है। अच्छा आपके साथ में ये रहता है, बाबा के साथ थोड़ी रहता है, स्थूल में तो कारोबार सब आपके साथ में है ना, तो अब हाथ उठाओ। लोगों ने हाथ उठाया, सबने हाथ उठाया, हाँ बाबा ये हमारे साथ रहता है और जो आपने हमसे प्रश्न पूछे हैं उसके अनुकूल है। बोले कि अच्छा थैंक्स, भगवान से थैंक्स मिले आत्मा को और क्या चाहिए। तो ऐसे ही पालना में चलते हुए, मर्यादाओं में चलते हुए, अपना समझते हुए और अपनी फैमिली से प्यार रखते हुए, बाबा से प्यार करते हुए, एक बार 78 में इस हाल के अंदर दादी दीदी ने भट्टी रखी और सारे ऑल इंडिया से कुमारों को बुलाया। 450 कुमार आए। 450 कुमार में ऐसा ही कुछ प्रश्न दादी दीदी के थे, मर्यादाओं के और धारणाओं के फॉर्म बना करके दिए थे, इसमें सबको भरना है। उसमें से 4 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से मैंने भी फॉर्म भरे। तो 450 गोपों में से दादी दीदी ने मेरे को यहाँ स्टेज पर बिठा करके सौगाती नाम दिया कि देखो बाबा का नाम बाला करने वाला, नहीं तो देखो कोई है ही नहीं यहाँ पर, इतने सारे गोप बैठे हुए हैं, दादी ने ही नाम दिया। तो सब लोग उस समय के सब लोग जानते हैं। तो दादी और दीदी की और बाबा की जो पालना मिली और हम सहन करते गए उस समय को, जैसे मैंने बताया कि हर प्रकार से इकोनॉमी थी। मैं सबसे पहले यहाँ टेलर डिपार्टमेंट में काम करता था और टेलर डिपार्टमेंट में काम करने से क्या होता था कि दीदी के साथ में मेरा बहुत कनेक्शन था। एक माता आई दिल्ली से, माता का वो सूटकेस, उसका पेटी था, उसमें कपड़ा वपड़ा लाई होगी, उसका बच्चा उसको पैसा देता है, वो जमा करती रहती है, 1000-2000 उस समय इतना होगा, तो वो लेके आई बाबा के घर में देने के लिए, संकल्प करके लाई। उसका चोर ले गए पेटी, चोरी हो गई गाड़ी में। दीदी दिल्ली की थी दीदी, तो बहुत पालना माताओं की करती थी। दीदी के पास में आई और बोली कि दीदी मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मेरा कपड़ा भी नहीं है और मैं बाबा के लिए इतना पैसा लेके आई थी। चला दीदी ने उसको कहा कि बिल्कुल संकल्प नहीं करना, तुमने संकल्प किया ना कि मैं बाबा के लिए ले जा रही हूँ, बाबा को मिल गया, स्थूल में देने की कोई जरूरत नहीं, मिल गया बाबा को, लेकिन तुम नाराज नहीं होना और दुख नहीं करना अपने दिल के अंदर, बाबा को मिलकर। मेरे को बुलाया, बोले कि इधर आओ, माता के लिए 2 जोड़ी कपड़ा बना के दो, अभी पेटीकोट बना के दो, साड़ी दो, ब्लाउज दो, इसको अभी अभी भी दो, अभी बना के दो उसको। तो ऐसा दीदी की पालना और दीदी का प्यार इतना रहा, बात मत पूछ। तो हमको ड्यूटी मिलती थी, जब बाबा की पधरामनी होती थी मधुबन में, तो हम सबके क्लास होते थे शाम को, और शाम को क्लास के अंदर ये ड्यूटी दी जाती थी कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, बाबा का सीजन चल रहा है, बाबा के बच्चे आ रहे, अपने अपने डिपार्टमेंट को छोड़ देना है, बंद करना है, और भाई बहन आने वाले हैं उनकी सेवा करनी है। तो मुझे ड्यूटी मिली थी पानी भरने की। यहाँ आपने देखा होगा प्रेस के कपड़े रहते हैं, यहाँ एक छापरा बनाया हुआ था, वहाँ एक बॉयलर होता था, पूरे मधुबन के लिए एक ही बॉयलर गर्म पानी का, उस जमाने में ठंडी बहुत पड़ती थी। तो मेरे को उस दीदी ने मेरे अपने पास बिठाया और समझाया मेरे को कि देखो जैसे 4 बजे वैसे वो छोटा हाल, मैं छोटे हाल में आना और सबके पीछे बैठना, समझा रही दीदी आप चले जाना उस बात के अंदर, सबके पीछे बैठना और 4:15 बजे जब रिकॉर्ड बजेगा यहाँ पर, तब धीरे से उठना और दादी दीदी के कमरे से बाल्टी उठाना। उस समय बाल्टी कौन सी थी, वो लोहे की बाल्टी थी, आवाज करने वाली, आजकल की बाल्टी नहीं थी प्लास्टिक की, बाल्टी का आवाज नहीं आना चाहिए और तुम्हारे पाँव का भी आवाज नहीं चाहिए, ऐसे घिस के नहीं चलना है पाँव वरंडे में, क्योंकि सब मेडिटेशन कर रहे हैं। और बॉयलर से बाल्टी पानी ला करके और सब कमरे में रखना, ये मेरे को ड्यूटी मिली, ये मैं करता था। समझा कैसे रही है, ऐसे चलना बाल्टी लेकर के जैसा फरिश्ता चल रहा है, जरा भी पांव का आवाज नहीं आना चाहिए। जी दीदी। फिर मैंने दीदी को पूछा कि दीदी सब लोग योग करते हैं और मेरे को आपने उस समय ड्यूटी दी पानी भरने की, तो मेरे को बाजू में बिठाया और बोला कि बुद्धू कहीं का, बोले कि तेरे को दीदी ने ड्यूटी दी, तेरे को दीदी कर्मयोगी बना रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने कहा मेरा ध्यान तो मेडिटेशन में था, ये सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सेवा के साथ साथ में शिक्षा, सावधानी, पालना, ये सब चीज हमको मिलती गई। और उससे क्या हुआ कि हमारा जीवन बन गया। अभी वो जो स्थूल हम काम करते थे, आज अब मेरे को बोलो कि भाई रमेश भाई यहाँ झाड़ू पोछा करना है या धुले करना है, ये करना है, तो मैं करूंगा। क्यों? कि देह भार नहीं रहा, खत्म हो गया। तो बाबा ने अपने यज्ञ के अंदर ये सिस्टम रखा कि कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, फलाना हो, जाओ बच्चे सब्जी काटो, जाओ बच्चे कपड़ा धुले करो, जाओ बच्चे ये करो, जाओ बच्चे ये करो। क्यों? कि देह अभिमान को तोड़ने के लिए, काम कराने के लिए नहीं। देह अभिमान है ना, उस देह अभिमान को तोड़ने के लिए। तो ये काम करते 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 और हम आज भी आपके सामने हैं, और कई लोग हैं वो सब छोड़ करके चले गए। बोलो ये कौन करेगा झंझटबाजी? बर्तन मांजते थे हम, हमारे हर एक कपड़े के ऊपर, मेरे रूमाल पे मेरा नंबर है, उनका दादी दीदी का दिया हुआ, हर एक कपड़े पर बर्तन होगा, कपड़ा होगा, जूता होगा, चप्पल होगा, खटिया होगी, A to Z जो भी मेरा सामान है उस पर मेरा नंबर है। क्यों नंबर है? क्योंकि नंबर इसलिए है कि बड़ी इकोनॉमी थी। अगर ये रूमाल भी अगर गुम हो जाएगा तो धोबी घाट वाला है ना, वो पजामा, कुर्ता, रूमाल, गज्जी, कच्छा, बहनों की ब्लाउज, साड़ी सबके ऊपर होता था उनका नंबर, तो वो उठाते नहीं थे और वो पड़ा रहता था धोबी घाट में। तो वो जाता था दीदी दादी के पास में और दीदी को बोलता, दीदी इतनी सारी गठड़ी हो गई, कोई लेने नहीं आया, उसके कपड़े पड़े हैं। बोले कि रात्रि क्लास में गठड़ी ले आना, क्लास में गठड़ी ले आना क्लास में, और गठड़ी पीछे छुपा के रखता, क्लास पूरा होता है, थोड़ा आधा क्लास होता है। बोले कि अच्छा, और कोई किसी का काम है? वो धोबी घाट वाला बोलता, जी दीदी मेरा काम है। बोले क्या काम है? तो गठड़ी लाके रख देता सामने, गठड़ी लाके रखता था, उसमें से निकालता था कपड़ा, निकालता था, ये फलाना नंबर है, 31 नंबर मेरा है। बोले ये 31 नंबर किसका है? तो सभा में से उठ करके दीदी के पास में आना पड़ेगा लेने के लिए। फिर दीदी उसको शिक्षा देगी, क्यों? बाबा के यज्ञ की संभाल नहीं है, अपनी चीज को संभालते नहीं हो। तो इसके लिए सब आज तक दादी दीदी के कपड़ों पर भी नंबर था, हमारे पर भी नंबर है। तो ये संभालने के लिए कि हम कितना यज्ञ की चीज को संभालते हैं। हमारे खाना खाने के बर्तन थे उसके ऊपर भी हमारा नंबर था, अपने हाथ से धुले करना, सफाई करना और अपनी जगह पर रखना। तो ऐसे ही हर बात के अंदर व्यवस्था, डिसिप्लिन, साफ सफाई। बड़ी दादी एक दिन मेरे पास में आई, बोले चल तो तुम्हारा लाइट हाउस में तुम लोग रहते हो ना, वहां देखना है। उस समय सब अपने अपने डिपार्टमेंट में गए हुए थे और मैं दादी के साथ में, दादी मेरे साथ में चली। 5 रूम है लाइट हाउस में और 5 रूम नीचे है। तो चली, अच्छा ये खटिया किसकी है, इस पे कौन सोता है, इस पे कौन सोता है, इतनी बारीकी से, इतनी A to Z तकिया रखा हुआ है ना, उसको उलट करके देखती थी बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, कि इसके अंदर कोई बाहर की पुस्तकें तो नहीं पढ़ते हैं लोग, वेरीफाई खुद करती थी। ऐसा नहीं कि देखना वो लोगों, नहीं, खुद जाकर करती उनके साथ में सारे कमरे में देखे। अच्छा मैंने सोया हूं तो कपड़े उतार के रखे हैं, कहाँ रखे हैं, किधर रखे हुए, जूता चप्पल कहाँ रखा हुआ, ये सारा A to Z सब देख करके फिर रात को बोले कि आज दादी का क्लास है। बोले सब घबराते थे उस समय, दादी का क्लास या दीदी का क्लास, उस समय सब घबराते, बोले क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, क्या बात है पता नहीं। तो दादी फिर क्लास कराती थी, बोले कि आज मैं गई थी गोपों के तरफ गई थी, सब देख करके आई हूं, ये देवता बनने वाले हैं, ऐसे देवता बनने वाले हैं आप लोग, कपड़ा कहाँ पड़ा है, कौन सी बेडशीट लगी हुई है, इसकी बेडशीट ये लगी है, उसकी बेडशीट वो लगी, दूसरा कलर की लगी है, जूता चप्पल कहाँ पड़ा है, कहाँ कहाँ कपड़ा टंगाया। हमारे कमरे का फर्स्ट नंबर आता था। बोले कमरा अगर देखना है तो जाओ इन लोगों का कमरा देखो किस प्रकार से रहते, एक सरी की बेडशीट, जूते चप्पल रखने का स्टैंड उसके ऊपर रखा हुआ, साफ सुथरा कमरा एकदम साफ। और वो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो पालना है, आज भी अभी भी नीचे मेरा कमरा है तले शांतिवन में, और यहां पर भी है, कभी भी जाओ बेडशीट के ऊपर एक रिंकल नहीं मिलेगा आपको, आदत है। जैसे 3:30 बजे उठते हैं ना, उसी वक्त साफ सुफ करके रख देते। 3:30 बजे उठने के बाद में 2 बजे सोने को जाऊंगा खटिया पर, तब तक खटिया में कमरे में नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है जाने की। सेवा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद में सारा काम पूरा होने के बाद में कमरे में सोने के लिए ले जाऊंगा। और रात को जब 4 बजे सुबह, दोपहर को 4 बजे उठने के बाद में रात को 10 बजे कमरे में जाऊंगा। तो ऐसे ज्ञान सुनने से देवता नहीं बन जाएंगे। ज्ञान सुनने से कोई देवता नहीं बनता है। प्रैक्टिकल धारणा चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन चाहिए, प्रैक्टिकल सब चीजें चाहिए। क्यों? कि आज हम मंदिरों के अंदर देखते हैं कितनी सफाई रखते हैं, जड़ मूर्तियों की, मंदिरों की कितनी सफाई है, तो ये चेतन देवी आत्माओं के अंदर कितनी सफाई होनी चाहिए, खाने की, पीने की, रहने की, सब साधनों की कितनी सफाई होनी चाहिए, जो देख करके। क्यों कहा है? घर मंदिर है। हम जिस घर के अंदर रहते हैं वो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर चेतन आत्मा देवता रहती है, और ये शरीर भी मंदिर है जिसके अंदर आत्मा है। तो ये शरीर कितना साफ सुथरा चाहिए। तो बाबा ने नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करेंगे, मर्यादा करेंगे, तो उसका वायुमंडल, उसका वाइब्रेशन, उसका दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाएगा। तो सिर्फ बाबा की मुरली सुनना नहीं है, सिर्फ क्लासेस सुनना नहीं है, लेकिन अपने जीवन में धारण करना है और धारणा युक्त जीवन भी बनाना है। बाबा, श्री बाबा या ब्रह्मा बाबा आते हैं जो हमें कहते हैं कि मुरली सुनाते हैं। हम मुरली सुनते हैं, क्या सुनते हैं? मुरली ज्ञान है और अनुभव है। श्री बाबा ने क्या अनुभव सुनाया हमको? कि मैं परम धाम निवासी, मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूं, मैं स्टार हूं, मैं छोटा हूं, मैं यहां ब्रगुटी में इसकी बैठा हूं, इसकी आंखों के द्वारा देखता हूं, कान से सुनता हूं, मुख से आप बच्चों से बात करता हूं। ये क्या है? ज्ञान है या अनुभव है? अनुभव सुना रहा है शिव बाबा, अपना अनुभव सुना रहा है, और ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहा है। बच्चे बाप समान बनो, जैसे बाप ने अपना तन मन धन वचन कर्म तपस्या की, ऐसे बाप समान करो बनो। तो ज्ञान अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अगर अनुभव युक्त जीवन आए तो उसको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान होता ही है अनुभव करने के लिए। हमें ज्ञान जो मिला है वो किस लिए मिला है? अनुभव करने के लिए। तो अब हम अपने को चेक करें कि क्या हमारा ऐसा अनुभव युक्त जीवन बना है। सिर्फ सुनते रहेंगे, क्लास सुनते रहेंगे, सेंटरों पर जाते रहेंगे, मधुबन में आते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा जीवन चाहिए। तो ऐसे बहुत अनुभव है। आप लोगों को भी भूख लगी होगी और 1 बज गया एक टाइम है। तो अनुभव से बढ़कर के कोई दुनिया में चीज नहीं है। हम जहां पर भी जाते हैं, सेंटरों पर जाते हैं, तो बहने क्या बोलते हैं? हाँ, मधुबन से रमेश भाई आया है या मधुबन से कोई भी भाई आया है, अपना अनुभव सुनाओ। अरे भाई, अनुभव सुनाओ ना, ज्ञान नहीं सुनाओ। ज्ञान तो सब सुने हुए हैं, सबको मालूम है ना। बाबा से कोई ज्यादा ज्ञान सुना सकता है क्या? शिव बाबा की जो हम मुरली सुनते हैं उससे ज्यादा किसी भाई बहनों के पास में ज्ञान है? वही विचार सागर मंथन करके वो पॉइंट सुनाते हैं, ये सुनाते हैं, नहीं। हमने अगर 40 साल हम यहाँ यज्ञ में बिताया तो कैसे बिताया, क्या क्या हमने प्राप्ति की है, वो अनुभव सुनाइए आप, वो अनुभव सुनाओ। तो बाप दादा से, दादियों से और ब्राह्मण परिवार से, भाई बहनों से बहुत पालना ली। और दादी हमको बताती थी, जब दादी, बड़ी दादी थी ना, प्रकाशमणि दादी, वो हमारा क्लास करती थी, तो कहती थी कि अभी दादी है ना, आप लोगों के साथ में ज्यादा टाइम नहीं है। दादी ने हमको बताया है, अभी दादी आपके साथ में ज्यादा टाइम नहीं। कितना साल बोला मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, शरीर छोड़ने से पहले हमारा क्लास में ले, ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहेगी दादी। लेकिन जो बाप दादा की पालना ली है, दादी दीदी की जो पालना ली है, ऐसी पालना आप भी देना, ऐसी पालना आप भी करना। दादी दीदी कब तक तुम्हारे साथ में रहेगी और पालना करती रहेगी? ये बातें सारी समझाई। तो आज भी उनकी जो प्रेरणा और जो उनके आशीर्वाद हैं और जो उनकी भावना है, उनको आज भी हमने कायम रखा है। मेरे पास में, चाहे मैं यहां होता हूं, चाहे नीचे शांतिवन में होता हूं, ज्यादा करके सारे प्रोग्राम शांतिवन में है, तो शांतिवन में रहते हैं, तो वहां सब जितनी भी हमारी बहनें हैं टीचर सारी ऑल इंडिया की, वो सब मेरे को मिलने के लिए आती है कि रमेश भाई के पास चलो। टोली का डब्बा रखता हूं, जैसे बाबा का सीजन शुरू होता ना 200 टोली का डब्बा मेरे पास में टोली डिपार्टमेंट से आ जाता है कि रमेश भाई को मिलने के लिए भाई बहने आते हैं ना, वो टोली देखे जो भी मिलने के लिए आते हैं, बहुत मिलने के लिए आते हैं। तो बाबा ने दादियों ने वो ये कहते हैं कि बाप समान बनो, एक शब्द के अंदर आप रियलाइज करो कि क्या बाप समान बनना है, मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या चीज हो जो बाप समान बने। मैं तमिलनाडु में हर साल प्रिंटिंग के लिए जाता हूं क्योंकि काफी वर्षों से वहां अपना प्रिंटिंग होता है, जो ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के, लक्ष्मी नारायण के जो चित्र होते हैं वो, और नोटबुक है, डायरी है, थॉट फॉर टुडे है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है। तो उस समय जब बनाने के लिए जाते थे, 10-12 साल से मैं जा रहा हूं वहां पर, तो बड़ी दादी से मिल करके जाता था, तो बड़ी दादी मेरे को पूछती थी, दादी मैं छपाने के लिए जा रहा हूं, लिस्ट बताओ क्या छपाएगा, प्रिंटिंग करके लिस्ट ले जाता था, दादी ये थॉट फॉर टुडे है इतना छपाना है, ये फलानी चीज इतनी छपानी, डायरी इतनी छपानी, अच्छा इसका बजट क्या है, दादी 30-35 लाख रुपया, 30-35 लाख रुपया, ऐसे करती थी, 30-35 लाख रुपया। मैंने कहा दादी तो तुम्हारे पास में है, मैंने कहा नहीं दादी वहां से छपा के लाएंगे, इसको बेचेंगे उसके बाद में देंगे, अच्छा अच्छा फिर ठीक है जाओ। ऐसे में जब तक दादी थी तब तक जब हर साल जाता था तो मिलके जाता था, दादी ये लिस्ट है देख लो, बाबा के आप बच्चे हो, अनिष्ट हो, वफादार हो, ईमानदार हो, जो भी आप करोगे वो सब अच्छा ही करोगे, भले क्या दादी को नहीं देखना, भले जाओ। कितना परिवर्तन, बोले कि लिस्ट दिखाओ क्या छपाना है, और जैसे जैसे दादी का समय आता गया वैसे दादी जवाबदारी देती गई, नहीं तुम मालिक हो, ये शब्द दादी के, नहीं तुम मालिक हो जो करोगे वो ठीक है। उस समय थोड़ा बहुत पैसा बचता था, 5-10 हजार, 20 हजार रुपया लेकर के दादी के पास में जाता था, इतनी खुश होती थी, बाबा का मेरा अनिष्ट बच्चा देखो। तो एक दिन मैं यीशु दादी के ऑफिस में पैसा लेके गया, और एक युगल बम्बई का डायमंड मर्चेंट बैठा था, दादी से ऑफिस में बात कर रहा था, तो उसको बताती देखो मोहिनी, देखो मुन्नी, देखो यीशु, देखो देखो अरविंद भाई, देखो बाबा का अनिष्ट बच्चा देखो, मैं पैसा लेके आया, देखा माता, देखा माता जी, देखा युगल बैठा उसको, उसके गले में सोने का हार था, दादी को निकाल करके उसी वक्त पहना दिया उसने। तो दादी दीदी की जो सेवाएं हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, सेवा हो रही है उसके अंदर। आज भी वो माता आती है, उसी युगल को मैंने बोला, यहां भाई बहनों ने बोला मेरे को, अपने दूध के डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि रमेश भाई ज्ञान सरोवर में आइसक्रीम का मशीन है और हमको वहां से लाना पड़ता है, हमारी दिल होती है कि पांडव वन में जो आने वाले भाई बहन है हम भी उनको खिलाएं, हम भी सेवा करें उनकी, तो हमको मशीन मंगा दो, मेरे को बोला अभी 3-4 साल पहले। वो वहां से लाते थे, उनको बोलना पड़ता था कि हमको एक ड्रम चाहिए, वो फिर बनाते थे फिर यहां लाते थे। तो मैंने वो जो डायमंड मर्चेंट थे मेरी पहचान वाले बंबई वाले, उनको मैंने कहा कि आपको एक सेवा करनी है, डायरेक्ट अपने दिल में कुछ है ही नहीं, सेवा करनी है आपको। बोले कि बोलो। मैंने कहा कि ऐसा है यहां पर आइसक्रीम का मशीन लगाना है, कितने का आएगा। मैंने कहा 5 लाख के अंदर आएगा उसका पूरा प्लांट। बोले कि ले आओ हम देंगे पैसे, ले आओ। मैं गया अहमदाबाद, अहमदाबाद गया और आइसक्रीम का प्लांट ला करके लगा दिया। आज देखो कितने बाबा के बच्चे खुश हो रहे हैं खा करके, प्लांट लगा दिया। वो युगल आया, उसके दूध के भंडारे में बिठाया और कैसे आइसक्रीम बन रही है वो देख करके इतने खुश हो गए, और सब भाई बहने खा रहे हैं वो तो गदगद हो गए, और वो मेरे को थैंक्स देने लगे, रमेश भाई आपको बहुत थैंक्स है। मैं क्यों? बोले कि आपने हमारा सफल करा दिया, हमें क्या पता यज्ञ के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जब तक बताओगे नहीं हमें थोड़ी पता है, आपने हमारा सफल कराया इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो कितनी आत्मा का सफल हुआ और खुश हुई। इसी प्रकार से मैं तमिलनाडु जाता हूं, बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, 60 एकड़ के अंदर, 60 एकड़ के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है, गार्डन है, प्रेस है, अपना डायमंड हाल जो है ना, ऐसे 4 हाल के अंदर मशीनें लगी हुई है, 4 हाल नीट एंड क्लीन, इतना भी डस्ट नहीं मिलेगा, सब फॉरेन के मशीन लगे, एक मशीन 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का एक एक मशीन। और वो जो मालिक है उसका, वो उसने वहां की बहन को बोला कि रमेश भाई हमारे पास में आता है यहाँ पर हमेशा, और बाबा का प्रोग्राम चलता, हम बाबा से मिलने चाहते हैं। उसने मेरे को फोन किया बहन ने कि ऐसे ऐसे है, वो अन्ना जी ने कहा है कि मैं और मेरा भाई और हम 4 जने युगल उसके साथ में मिलने आएंगे। मैंने कहा कर लिया हो, मैंने बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से शांतिवन में उनको मिलाया, और वो तो तमिल है, उसको ट्रांसलेशन किया, लेकिन बाबा ने उसको कहा, मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये अपना प्रिंटिंग का प्रेस इनका वहां पर, और मैं हर साल जाकर के इनके पास में प्रिंटिंग कराता हूँ, बाबा के चित्र है, लक्ष्मी नारायण के चित्र है, और कई चीजें बनाते हैं, तो इनकी बहुत दिल थी, बहुत दिन से कह रहे थे कि हमको बाबा से मिलना है। तो बाबा ने खूब दृष्टि दी पहले उसको और कहा कि सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई ना, उसको कहा कि सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई। वो इतने गदगद हो गए, यहां से फोन करने लगे तमिलनाडु में, हमको भगवान मिल गया, हमको भगवान मिल गया। तो मैं हर साल जाता हूं, तो वहां रेंट के मकान थे सारे सेंटरों पर, तो वहां मेरा काम तो 8 दिन का होता है, और उसका मैं गेस्ट होता हूं, प्रिंटिंग प्रेस का मैं गेस्ट होता हूं। मेरे लिए सब कुछ उसे, एक गाड़ी देगा, एक इनोवा गाड़ी देगा, ड्राइवर देगा, फल का टोकरा भेजेगा, और गाय का, उसकी फार्म हाउस से गाय का दूध भेजेगा मेरे लिए, बहुत कुछ करेगा। तो जब तक अपना सेंटर नहीं था, तब तक मैं होटल में रहता था, रेंट का सेंटर है वहां पर, भाई लोग रहते थे, बहने नहीं रहती थी। तो वो जब मैं जाता हूं, मेरे साथ में खाना खाता है सेंटर पर, मैं उसको बोलता अन्ना जी आज चलो मेरे साथ में, उसके युगल को भी लेके आता, बड़ा मल्टी मिलियन आदमी, करोड़पति, लेकिन मेरे साथ में आकर खाना उसको अच्छा लगता। मैंने खाने के टाइम पर उसको बोल दिया अन्ना जी आपने मधुबन देखा है और आपने सेंटर देखे है, सब बहनों को बाबा ने नियुक्त किया है, यहाँ सेंटर पर रहने की जगह नहीं है, इसलिए बहनें नहीं रहती है, भाई लोग सेंटर चलाते हैं, आप सेंटर बना के दो। मैंने बोल दिया उसको। तो खाना खाया, अपनी गाड़ी में मेरे को बिठाया और 2-4 फ्लैट दिखाए। मैंने कहा फ्लैट नहीं चाहिए, हाउस, बाबा का हाउस चाहिए। बोले कि ओके। तो मेरे साथ में जो वहां भाई होता है ट्रांसलेशन करने वाला, उसने सब बताया, उसको बोला कि आपको कहां अनुकूल जमीन है वो जमीन ले लो। जमीन ले लिया, सेंटर बन गया, अब मैं जाता हूं अपने सेंटर पर रहता हूं, और वो भी आकर के उस सेंटर पर खाना खाता है। तो ऐसे बाबा को, बाबा के बच्चों को प्रेरणा देने वाला चाहिए, और हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारा क्या कुछ है उसमें, उसका भाग्य बना और सब आके बाबा के बच्चे। और वो अब जब भी जाता हो ना, उसको मालूम होता है, वहां का भाई बताता है रमेश भाई आने वाला है, गाड़ी तुरंत भेज देगा। वो सीओ काशी में है, 1.5 घंटे का रास्ता है, वो मदुरई में प्लेन से उतरूंगा, गाड़ी आ जाएगी, और 8 दिन तक, जितने दिन तक मैं रहूंगा, गाड़ी मेरे पास में रहेगी, जहां पर भी आजू बाजू में सेंटर पर जाता हूँ, क्लास कराता हूँ, मेरे साथ में 2-4 भाई बहने होते हैं, उनको साउथ इंडिया घूमने के लिए गाड़ी दे देते हैं, घूम करके आते हैं, और जितने सेंटर पर जाता हूँ, जहां जितने भी रेंट के सेंटर थे, वहां सब क्लास करा करके भाई बहनों को प्रेरणा देके 4 नए सेंटर अपने बाबा के बन गए। तो जाता हूं, मेरा खाली 8 दिन का काम है, लेकिन 20-25 दिन मेरे को लग जाता है, मेरा पूरा तमिलनाडु के अंदर, पूरा उनके जोन के अंदर प्रोग्राम होता है। मैंने कहा बहन जी बड़े बड़े सेंटरों पर तो बड़े बड़े लोग आते जाते, जहां कोई नहीं जाता वहां मेरे को भेजो, जहां कोई नहीं जाता ऐसे छोटे छोटे सेंटर पर मेरे को भेजो। मेरे को गाड़ी देते हैं, ड्राइवर देते हैं, सब देते हैं, और छोटे छोटे सेंटर पर जाते, इतनी तमिलनाडु की सारी बहनें, इतनी सब जान पहचान की हो गई कि रमेश भाई इस बार हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना। मैंने कहा भाई तो आपका जोन वाले जहां प्रोग्राम बनाएंगे वहां जाऊंगा। तो इस प्रकार से बाबा का ज्ञान योग धारणा सेवा करके जीवन को बना करके प्रैक्टिकल लाइफ होगा, उस लाइफ के द्वारा उस बोल के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होगी। ओम शांति।
ओम शांति। सबको मजा आया? बहुत मजा आया। सभी के चेहरे बता रहे क्योंकि ज्ञान से भी भरपूर हो रहे हैं, तो अनुभव भी एक बहुत बड़ी खान है। जैसे ज्ञान का खजाना है, ऐसे अनुभव भी एक बहुत बड़ा खजाना है। और जो इस भूमि में रहकर अनुभवी बने हैं, तो उनके अनुभव भी हमारे जीवन को भी अनुभवी बनाते हैं। तो रमेश भाई जी ने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल अनुभव सुनाए, हम सभी दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।